ये बयान फरमाइए गालिब साहब, आप पंजाब में रहे, पंजाब के देहातों में आपने देखा मज़ारात हैं, सजादा नशीन बैठे हैं, दरगाहें हैं, बिल्कुल मामूल होता है, लोग जाते हैं मकबरों पर, वहाँ पर बोसा भी लेते हैं तबर्रुकात का, यहाँ तक के कब्रों को सजदा भी करते हैं। ये बताइएगा कि बड़ी तावीलात पेश की जाती हैं, भाई वो सजदा असल वाला तो अल्लाह को ही होता है, ये तो एक तज़ीम की, एक तरीके से झुकने की, उनके अदब एहतराम की अलामत है जिसको हम नुमाया कर रहे हैं। क्या कोई मुसलमान किसी दरगाह, किसी बुज़ुर्ग की कब्र, किसी मज़ार, किसी इस तरह की जगह पर जाकर सजदा कर सकता है? अगर वो ऐसा करता है और जानते बूझते करता है और इसको ओन भी करता है, तो इस तरह के मुकदमे के बारे में दीनी लिहाज से राय क्या होगी?
दीन में जो चीज़ें ममनू करार दी गई हैं उनमें से कुछ हकीकत होती है और कुछ उसकी अलामतें होती हैं। तो हमारे दीन में चूँकि शिर्क का कला कमा किया गया है, शिर्क के बारे में आप जानते हैं कि दुनिया पर उसकी फिक्री और अमली हुकूमत रही है कम व बेश 2,500-3,000 साल तक। अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने जद्दोजहद करके इस हुकूमत को ख़त्म किया है। तो इस मौके के ऊपर जैसे कि कुरान की आयत है, ये बता दिया गया है कि अब हकीकत भी ममनू है, वो तो हमेशा से ममनू थी, इसके कालब में या इसकी अलामतों में जो चीज़ें हैं वो भी हराम कर दी गई हैं। तो अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं किया जा सकता, ताज़ीम का भी नहीं किया जा सकता, रुकू की हद तक भी नहीं झुका जा सकता। इसी तरीके से जो आप ताज़ीम के वो ज़राए इख्तियार करते हैं कि जो अब हमारी इबादत के साथ ख़ास हो चुके हैं, जैसे हम अल्लाह ताला की बारगाह में क़याम करते हैं और हाथ बांध कर मुअद्दबाना खड़े होते हैं, या इसी तरीके से हम दोज़ानू बैठ जाते हैं और एक ख़ास हैत के साथ बड़े अदब से दुआएं करते हैं, ये सारी चीज़ें किसी न किसी दर्जे में अल्लाह ताला के लिए ख़ास हो चुकी हैं। तो इनमें से कोई चीज़ किसी के लिए भी इख्तियार नहीं करनी चाहिए, और अगर इख्तियार की जाएगी तो हर चीज़ के लिहाज से कुछ मामलात हराम होंगे और कुछ के बारे में बड़े इत्मीनान के साथ कहा जा सकता है कि वो शिर्क के मज़ाहिर हैं। इस वजह से उससे हर बंदा मोमिन को बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि वो हर गुनाह को कायदे जाब्ते से माफ़ कर सकते हैं लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे। शिर्क अल्लाह पर इफ्तरा है, झूठ बांधना है। तो हमारे दीन में इन सब चीज़ों से रोक दिया गया है। इबादत की जितनी हयातें हैं, ख्वा वो क्याम हो, ख्वा वो रुकू हो, ख्वा वो सुजूद हो, ख्वा वो दोज़ानू बैठना हो एक ख़ास तरीके से, इनमें से कोई चीज़ ना अपने जुज़ में किसी गैर अल्लाह के लिए की जा सकती है, ना अपने कुल में बस हैसियत हैत गैर अल्लाह के लिए की जा सकती है।
अच्छा, से भी आपने फरमाया कि सिर्फ अल्लाह के लिए ख़ास है। कुरान मजीद में जब हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा, उनको कहा आदम को सजदा करो, तो वहाँ पर तो अल्लाह मियाँ एक बंदे को सजदा करवा रहे हैं।
जी हाँ, इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लम से पहले जो मज़ाहिर की चीज़ें हैं वो अपनी इब्तदाई सूरतों में, जैसे आप एक ताज़ीमन सर झुका देते हैं, अरबी में उसको भी यही कहा जाता है, तो ये चीज़ें रवा रखी गई। लेकिन फिर हुजूर के ज़माने में आकर जैसे कुरान मजीद में आयत है कि खुदा के सिवा आप किसी के सामने भी नहीं होगी, तो इसलिए रोक दिया गया ताकि हमेशा के लिए, अब चूँकि पैगंबरों के आने का सिलसिला बंद हो गया है, तो किसी मज़हर के ज़रिए से भी कहीं नकब लगाने का मौका बाकी ना रहे। इसीलिए मैंने जवाब देते ही पहले ये कहा था कि एक चीज़ की हकीकत होती है, उसके मज़ाहिर होते हैं, मज़ाहिर किसी वक्त में गवारा किए जा सकते हैं लेकिन अब वो भी गवारा नहीं होगा।
एक साहब ने पूछा है, मज़ारात तो हैं, कब्रें भी हैं और बुज़ुर्गों की हैं और जाना भी पड़ जाता है, तो अब हम जब जाएं तो वहाँ पर जाने के क्या आदाब हैं जो दीन और शरीयत के दायरे में हम मलूज रख के पास जा सकते हैं?
क्यों जाना पड़ जाता है? जाने की एक ही वजह हो सकती है, ये कि आदमी कहीं इबरत हासिल करने के लिए जाए, तो उसके लिए मियानी साहब जाना चाहिए जहाँ पर टूटी हुई कब्रें हैं, जहाँ पर आदमी को अंदाज़ा होता है कि मैं किस अंजाम को पहुँचने वाला हूँ, तो वहाँ क्या करना है आपने जाके?
यानी हम अपने बच्चों को तारुफ कराएंगे बुज़ुर्गों की कब्रें हैं, बड़े बड़े उलमा थे,
बस तारुफ कराएं। फिर आपने खुद ही बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोल दिया, तारुफ कराएं और उनके लिए भी मगफरत की दुआ करें, वो आपकी दुआओं के मोहताज हैं, ये करें जो करना है।
ठीक, अच्छा ये बताइएगा हमसे, आपने बताया था कि ये जो शिर्क के मज़ाहिर हैं हमारे दीन में, इसको भी ममनू करार दे दिया गया है, और अब नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज में क़याम भी है, नमाज में रुकू भी है, सजदा भी है, रुकू और सजदा हम करें तो ज़ाहरी बात नज़र आता है कि वो शिर्क के मज़ाहिर हैं, नहीं होना चाहिए गैर अल्लाह को, सिर्फ अल्लाह के लिए ख़ास है। तो क़याम जो है, कौमी तराना हो रहा होता है, हम खड़े होते हैं, हमारे अफसरान बाला आते हैं, हम खड़े होते हैं, सुर भी मारते हैं, तो ये क़याम भी तो नमाज ही का हिस्सा था, तो वहाँ पर उसके बारे में फिर क्या हुक्म?
उसमें चूँकि एक आदाब का तरीका आम लोगों के लिए भी है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला के पैगम्बर ने फरमाया कि नबूवत ख़त्म कर दी गई है, لیکن اچھا خواب باقی ہے. تو اس میں بھی سجدے اور رکوع کا معاملہ چونکہ بہت ہی واضح ہے تو اس پر پابندی لگا دی گئی, باقی چیزوں کو انسانوں کے ذوق پر چھوڑ دیا گیا.
اور یہ جو لوگ مثال کے طور پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے اجتماعی طور پہ درود پڑھتے ہیں, اس میں کیا ہے؟ کیونکہ ہاتھ ہم نماز میں بھی باندھ رہے ہوتے ہیں.
اس میں کوئی معنی نہیں ہے. درود پڑھنا چاہتا ہے کوئی آدمی, قرآن پڑھنا چاہتا ہے, تلاوت کرنا چاہتا ہے, کسی بزرگ کے احترام میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ معلوم ہے کہ ایک موقع کے اوپر جب ایک بڑے سردار آئے تو آپ نے ان کے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ قوم الا سیدکم, احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور استقبال کرو, اس میں کوئی حرج نہیں.
اس طریقے سے ہمارے مختلف جگہوں پہ یہ مثال کے طور پہ جھک کے ملنا ہے, ہم سندھ کی روایت میں دیکھتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے.
اس طرح کی چیزیں تہذیبی روایات میں ہوتی ہیں. ادب معاملہ جب تک ادب اور احترام میں رہتا ہے اس وقت تک گوارا کیا جائے گا. اس میں بھی اگر اس سے آگے کہیں بات بڑھ رہی ہے تو ہر آدمی کو متنبع ہونا چاہیے کہ میں نے اس وقت کسی کو خدا تو نہیں بنا لیا, لیکن رکوع اور سجدہ تو واضح علامتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, اس لیے ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. ان چیزوں میں وسعت ہے, اللہ تعالیٰ کوئی غلط بات اگر نہیں ہوئی تو معاف فرمائے گا.